ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। Someone had to translate for Maharaj.
Haribol.
Brahmachari, you translate for Maharaj. Get a chair next to Maharaj. Sit down, translate for him. तो आज हम लोग बैठिए, हरे कृष्णा, सब लोग बैठिए। भगवान श्री रामचंद्र की रामनवमी महोत्सव की बात कोई नहीं करेगा, सब लोग हरि कथा सुने बैठिए। आज भागवत महापुराण के नौवें स्कंद से श्लोक दसवां अध्याय का श्लोक दो बोर्ड पर लिखा हुआ है। भगवान श्री राम के लीला कथाओं का हम लोग वर्णन करेंगे। तस्या अपि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरिः अंशांसेन चतुर्धा। अगात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरहि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशान् संसेन चतुर्धा अंशा अंशेन चतुर्धा। अगात पुत्रत्वं पार्थितं सुरै अंशा अंशेन चतुर्गात पुत्रत्व प्रार्थित सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। और कोई प्राणी माता जी लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तस्या उनके महाराज दशरथ के अपि भी भगवान भगवान ऐसा उनमें से साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परब्रह्म परम सत्य हरि ही भगवान श्री हरि अंश अंशेना अंश के रूप में चतुर्धा चार भागों में अगात स्वीकार करेंगे पुत्रत्वम पुत्रत्व को पार्थितः प्रार्थना करने पर शुरई देवताओं के द्वारा रामा भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण लक्ष्मण जी भरत भरत जी शत्रुघ्न शत्रुघ्न जी इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न प्रकार के अलग अलग नाम होंगे। अनुवाद और तात्पर्य मेरे पास अंग्रेजी किताब है तो अंग्रेजी पढ़ लेता हूं बाद में हिंदी में। Being prayed for by the demigod, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and expansion of expansion. Their holy name were Ram, Lakshmana, Bharata and Shatrughna. This celebrated incarnation thus appeared in four form as the son of Maharaj Dasarath. Purport. Lord Ramchandra and his brother Lakshmana, Bharat and Shatrughna are all Vishnu Tattva and not Jiva Tattva. The Supreme Personality of Godhead expands into many, many forms. Advaitam, Achutyam, Anadi, Anantarupam. Although they are one and the same, Vishnu Tattva has many forms and incarnations. As confirmed in Brahma Samhita, Ramadi Murtisu Kalani Amenatishtan. The Lord is situated in many forms such as Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna. And these forms may exist in any part of His creation. All these forms exist permanently, eternally as individual personality of Godhead. And they resemble many candles, all equally powerful. Lord Ramchandra, Lakshmana, Bharata and Shatrughna, who being Vishnu Tattva, are all equally powerful because the son of Maharaja Dasarath in response to prayer by the demigod. Sorry, became the son of Maharaja Dasarath in response to prayer by demigods. Iske pahle ka jo slok hai, usme bhi tatparya nahi hai, to usko pad leta hu. Sri Suka Ubacha, Khatvangam Drigabahuscha, रघुस्तस्मात् पृथुश्वः अजततो महाराजः तस्मादशरथो भवत्। सुखदेव गोस्वामी सेड द सन ऑफ महाराज खटमांग वाज दृगबाहु एंड हिज सन वाज सेलिब्रेटेड एज महाराज रघु। फ्रॉम महाराज रघु केम अज एंड फ्रॉम अज वाज बर्न ग्रेट पर्सनालिटी महाराज दशरथ। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसुपुरुषं भुक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकं शोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे ट्रांसलेशन गोइंग ऑन तो सृष्टि में सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी
क्या हुआ
ब्रह्मा से हुए मरीचि गेट वन चेयर सिट डाउन ही ट्रांसलेटिंग फॉर यू ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि मरीचि के पुत्र हुए कश्यप दक्ष प्रजापति के पुत्रियों से उनमें से अदिति से विवाह हुआ कश्यप जी का जिनसे 12 आदित्य उत्पन्न हुए धत्रु मित्र अर्यमा शुक्र वरुण अंश भाग विवस्वान पूष सवितु त्रस्तु और विष्णु इनमें से जो विवस्वान थे उनके पुत्र हुए मनु जो वैवस्वत कहलाए हम लोग उनके ही मनवंतर में हैं वैवस्वत मनवंतर में मनवंतर मनु के पुत्र हुए इला बाय द वे महाराज मनु ने अयोध्या नगरी बसाई थी तो बाद में कथा बताएंगे तो मनु के पुत्र हुए इला और इला से 10 पुत्र हुए जिनमें से महाराज इक्ष्वाकु प्रधान थे इस प्रकार से अयोध्या में बहुत से राजा हुए जैसे कुकस्थ कुक्षि पृथु त्रिशंकु भारत भरत सगर दिलीप भागीरथ अम्बरीश नभाग जजाति रघु रघु के पुत्र हुए महाराज अज जो कौशल नगरी बसाए और कौशल कौशल एक जनपद है डिस्ट्रिक्ट है और अयोध्या उसमें एक शहर है जो कैपिटल सिटी कहलाता है कौशल का डिवीजन 2 भाग में बांटा गया है गंगा जी के उत्तर साइड और दक्षिण साइड तो कौशल एक विशाल राज्य है गंगा के उत्तरी भाग के और सरजू नदी के दक्षिणी भाग में यह बसा हुआ है तो यहां के राजा हुए महाराज अज महाराज अज ये जो मैं कथा आप लोगों को कह रहा हूं वाल्मीकि रामायण वशिष्ठ रामायण ज्ञान रामायण अद्भुत एवं अध्यात्म प्रमाण के आधार पर ये कह रहे हैं लेकिन मोस्टली वाल्मीकि रामायण से तो महाराज अज की कथा हो रही थी महाराज अज महाराज मनु के वंश में 38वें राजा थे अयोध्या के और वे दक्षिण कौशल में राज्य करते थे अयोध्या में जो उत्तर कौशल के राजा थे वो भी क्षत्रिय थे महाराज अज का जीवन बड़ा ही मौज मस्ती का जीवन था वे अलग प्रकार के राजा थे धनी लोग कुछ ऐसे होते हैं ऐसा बात नहीं कि धर्मात्मा नहीं थे महाराज रघु के पुत्र थे, रघुवंशी हैं, लेकिन उनका जीवन मौज मस्ती का था, क्योंकि उनकी पत्नी मौज मस्ती वाली मिल गई थी, तो पत्नी को खुश करने का काम था। उनके पत्नी का नाम था इंदुमती, वह एक अप्सरा थी और वह श्रापवश अप्सरा बनी हुई थी। एक दिन महाराज अवज अपने पत्नी इंदुमती के साथ में राजकीय उद्यान में बैठे हुए थे और आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे। ए आईटीबी वाले, सब बंद करो, क्या कर रहे हो तुम लोग, को डिस्टर्बेंस केवल हो रहा है, साइड करो आप लोग, बैठो। कल व्यर्थ में जब भी ये होता है तो बस ये लगाते हैं अपना डंडा वहां पर। कल तुम पहले क्यों नहीं सेट करते हो? हाँ, क्या हो रहा था बात? राजकीय उद्यान में बैठ करके आनंद पूर्वक अपना समय मस्ती का काट रहे थे। उस समय नारद जी वहां से जा रहे थे अपना वीणा बजाते हुए। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण रामे। नारद मुनि के वीणा में एक बहुत सुंदर सुगंधित वैजयंती की माला लगी हुई थी और भगवत कृपा बस वह माला ठीक वहीं पर गिरी जहां पर महाराज अज अपने पत्नी इंदुमती के साथ में बैठे हुए थे, और वह माला इंदुमती पर गिर पड़ी। ज्यों ही ब्रह्मचारी जी का माला इंदुमती पर गिरी, वो श्राप मुक्त हो गई, वो अपने स्वरूप में आ गई। अप्सरा थी स्वर्ग लोक की, अपने स्वरूप में आई और महाराज अज को राम राम कही और वहां से चल दिया। और महाराज अज बड़े व्यग्र हो गए। महाराज अज अब माला पहन लिए, शायद माला में ही कुछ शक्ति है, तो माला पहन करके चारों तरफ तड़फ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनका जीवन मौज मस्ती का जीवन था, तो दौड़ रहे थे इंदुमती को खोजने के लिए। सब जगह गए, सब जगह गए, इंदुमती कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो पत्नी वियोग में महाराज अज अपना प्राण त्याग दिए। पहले पत्नियां पति के वियोग में त्यागती थी, यहां पर महाराज अज पत्नी वियोग में त्याग दिए। पहला हिस्ट्री है, है? पत्नी वियोग में और भी त्यागे होंगे, एनीवे रघुवंश में। तो उस समय महाराज दशरथ मात्र 8 महीना के थे। 8 महीने, अयोध्या के राजा 8 महीना के थे, बाप मां दोनों गए। उस समय वशिष्ठ जी और सुमंत जी, महाराज रघु के सुमंत जी मंत्री थे और वशिष्ठ जी राजगुरु थे। तो वशिष्ठ जी ने सुमंत जी से कहा कि आप अयोध्या का राजभार तब तक चलाएं जब तक से यह बालक बड़ा न हो जाए। और महाराज दशरथ को, जो 8 महीने के छोटे बालक थे, उनको वशिष्ठ जी अयोध्या में नहीं रखे, बल्कि अयोध्या के जंगलों में, कौशल के जंगलों में एक ऋषि रहते थे, बड़े तपस्वी महान गुरु थे, जिनका नाम था मरुधनवा। तो मरुधनवा को दे दिए कि आप इस बालक का देखभाल करना, क्योंकि जानते हैं कि राजा लोग हमेशा एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, देवता पर भी और दानव देवताओं पर और देवता दानवों पर। ठीक वैसे ही जब कहीं आग लगता हो तो वहां पर कोई हवा नहीं होता है, तो चारों तरफ से हवाएं आती है वहां पर, क्योंकि वो रिक्त स्थली है। तो वैसे ही राजा विहीन एक तरह से था अयोध्या उस समय, तो स्वाभाविक था कि अन्य राजा लोग अटैक करेंगे। और जब तक से दशरथ रहेंगे, छोटे भले ही 8 महीने के बच्चे हैं, लेकिन हैं वो राजा, जब तक से वे लोग उनको मारेंगे नहीं तब तक से अयोध्या को छीन नहीं सकते हैं उनसे। तो 8 महीने के बच्चे को मार सकते थे। इसीलिए वशिष्ठ जी बड़े बुद्धिमान थे। वशिष्ठ जी वे इनको मरुधनवा को दे दिए। मरुधनवा जी बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव थे, गुरु थे। हम यहां तक उनके यहां स्वर्ग की गाय नंदिनी थी, तो आप समझ सकते हो कितने महान थे वे। तो महाराज मनुधनवा के यहां महाराज दशरथ पलने लगे। बड़ा इनका सौभाग्य था कि प्रत्येक दिन दिव्य गाय नंदिनी का दूध पी रहे थे। गाय का दूध पीना बड़ा सौभाग्य का बात है। जो गाय का दूध पीता है वो कुशाग्र बुद्धि होता है। तुम्हारा दशरथ बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे, बलशाली थे, सौंदर्यवान थे। दुख की बात है कि आज लोग गाय को काट रहे हैं और प्लास्टिक का दूध पी रहे हैं, नहीं तो भैंस का दूध पी रहे हैं। कानपुर में एक बार एक आदमी आया और कह रहा था कि स्वामी जी, ऐसे बात हो रही थी तो कह रहा था कि पश्चात जगत का कितना असर पड़ रहा है हम लोगों पर कि हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाए कि भैंस का दूध पिलाए, पहले बताओ। जब गाय का दूध पिलाओगे तो जरूर पहचानेंगे, लेकिन भैंस का दूध पिलाओगे तो भूल जाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हमारे कर्म फल को, कि कर्म फल जो व्यक्ति जो कर्म किया रहेगा वो कर्म फल उसको ढूंढते हुए वहां जरूर पहुंच जाएगा। जैसे गाय का बच्चा लाखों गायों के बीच में अपने मां को ढूंढ निकालता है, कितना बुद्धिमान होता है। भैंस को एक गांव से दूसरे गांव में छोड़ो तो भूल जाएगा कि हमारा घर किधर है जाने के लिए, लेकिन गाय भूलते नहीं है और गाय के बच्चे भूलते नहीं है। तो इसलिए महाराज दशरथ बड़े ही बुद्धिमान थे। अभी उनका नामकरण शायद हो गया था एनीवे, लेकिन दशरथ नाम कैसे पड़ा। मरुधनवा जी क्योंकि क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का नामकरण 12-13 दिन के अंदर होना चाहिए, तो कुछ नामकरण हुआ होगा, उसका वर्णन नहीं है। लेकिन दशरथ नाम कैसे पड़ा वह मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि मरुधनवा उनको सब अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण कर दिए थे। सब प्रकार के वाहन महाराज दशरथ चलाने में श्रेष्ठ थे। चतुरांगणी सेना के अध्यक्ष थे महाराज दशरथ। हाथी चला सकते थे, घोड़ा सवार कर सकते थे, रथ चला सकते थे, पैदल। चतुरंगणी यही होता है ना, हाथी सवार, घोड़ा सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल, ये चार सेनाएं चतुरंगणी कहलाती है। तो महाराज दशरथ चारों में निपुण थे। वे अपने रथ को दसों दिशाओं में ले जा सकते थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार कोने, 8 और आकाश और पाताल, कहीं ले जा सकते थे। अपने रथ को दसों दिशाओं में ले जा सकते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा दशरथ, जो अपने रथ को दसों दिशाओं में ले जा सके। जब महाराज दशरथ सब प्रकार से निपुण हो गए, तब मरुधनवा जी, ऋषि मरुधनवा, वशिष्ठ मुनि को संदेश भेजे कि अब वे तैयार हो गए हैं, अपट्टा हो गया है बच्चा, यानी 18 साल के हो गए हैं और सब प्रकार से निपुण हो गए हैं। जवानी 25 साल तक की अवस्था जो है वो सीखने की आवश्यकता है। कहा जाता है इन यूथ वी लर्न, इन एज वी एक्सपीरियंस। जब जवान हैं तो हम सीखते हैं, इस सीखने का समय है। तो जितने 25 साल से नीचे वाले, 30 साल से नीचे वाले हैं, खूब गीता भागवत का श्लोक रट करके पी जाओ, खूब याद कर लो, बाद में मुश्किल होगा। इन यूथ यू लर्न, इन एज यू एक्सपीरियंस और बिकम मैच्योर, तो ये ज्ञान बाद में काम आएगा। एनीवे, तुम्हारा दशरथ सब कुछ सीख गए थे, सब प्रकार से निपुण हो गए थे, तब उन्हें महाराज देवर्ष अयर्षि वशिष्ठ जी उनको बुलाए और उन्हें कौशल देश का राजा बनाया गया। वे बड़े ही प्रतापी राजा थे, तो दक्षिण ईशा दक्षिण कौशल के राजा ये थे और उत्तर कौशल के जो राजा थे उनका नाम था भानुमत। वे भी क्षत्रिय थे, एक ही वंश के थे, वे भी सूर्यवंशी ही थे। भानुमत को दो पुत्रियां थी, एक का नाम था बेश्रिणी और दूसरे का नाम था कौशल्या। कौशल देश के राजा थे और दशरथ भी कौशल देश के राजा थे। तो बेश्रिणी का विवाह अंग देश के जो राजा थे जिनका नाम था रोमपाद, उनसे हुआ था, और दशरथ को कौशल्या से लव हो गया, क्योंकि गंगा के उस पार और इस पार था ही, तो देखे थे, सुने थे कौशल्या के विषय में। महाराज दशरथ बड़े ही प्रतापवान थे, बुद्धिमान थे, सुंदर थे, यंग थे, ठीक वैसे ही भगवत परायण थे, साधु महात्माओं में उनकी निष्ठा थी, वैसे ही भानुमत की पुत्री कौशल्या, वह भी विभिन्न गुणों से परिपक्व थी। वो गुणवती थी, रूपवती थी, शीलवती थी। स्त्रियों का शील सबसे बड़ा धरोहर है स्त्रियों के पास। जैसे क्षत्रियों के लिए विजय उनको सम्मान देता है, वैसे ही स्त्रियों में शील उनका सम्मान देता है। तो गुणवती थी, रूपवती थी, शीलवती थी, सब प्रकार से निपुण थी, और महाराज दशरथ विवाह करना चाहते थे। तो हनुमत जी को जब पता चला तो वे बड़े खुश हुए, क्यों न खुश होंगे, इतने अच्छा राजा हैं, सब पृथ्वी कांप रही है उनसे, एक छत्र राधा हैं, तो अपने पुत्री को देने के लिए तैयार हो गए विवाह में, और उनके अधीनस्थ रह करके काम करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक नया घटना घटा। रावण का नाम आप लोग सुने हैं ना, कितने लोग रावण का नाम सुने, तो हाथ उठाओ तो। और जो लोग हाथ नहीं उठाए वो लोग क्या सो रहे हो कि रावण का नाम नहीं सुने हो? हमें लगता है कि जो यहां बैठा है तो रावण का नाम सुना ही है, लगता है सो रहे हो, नहीं तो आपका मन कहीं और है। तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो रावण भगवान शिव का बड़ा अनन्य भक्त था। तीर्थपाद जी सुन रहे हैं ना, तो जप करने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो रहीम कभी कहते हैं कि जब तक बहुत लोग मर गए, माला जपत जगमुआ, ये माला मत जपो, जप करो। जप करने का मतलब होता है सुनना, एकाग्रता चाहिए, और कथा सुनने का मतलब होता है सुनना, एकाग्रता चाहिए। खिचड़ी मत करो, ये अपराध होगा, और सामने ही बैठे हो बिल्कुल, ऐसा मत करो प्लीज। कोई भी जप जो कर रहा है, जप मत करो, कथा सुनो। हाँ जी, क्या बात हो रही थी? हाँ, हुंकारी भरो तब तो पता चलेगा कि हम सुन रहे हो। तो रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह एक दिन अपने पत्नी मनोदरी के साथ में कैलाश गया। रावण में बहुत से गुण थे, उसमें एक गुण था वीणा वादन करने का, और समस्त वेदों का प्रगाढ़ विद्वान था रावण। तो साम वेद का गान करने लगा वीणा बजाते हुए। भगवान शिव बड़े खुश हुए रावण से और उसको बहुत सा शक्ति प्रदान किए रावण को। रावण बहुत खुश हो गया। अब आते आते लंका आ रहा था, तो लंका आते आते वो सोचा चलते हैं परदादा के पास, थोड़ा मिल करके आते हैं ब्रह्मा जी के पास में, दादा के पिताजी परदादा, उनसे मिलकर के आते हैं। तो चला गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी जब रावण को देखे तो बड़े खुश हुए, कह रहे पता तू कहां था इतना दिन तक, हम तो भूल गया था लगता है। कह नहीं दादाजी, मैं नहीं भूला था, नाना जी दादाजी जो भी है, मैं नहीं भूला था। देखिए मैं कैलाश आया था, भगवान शिव से मिला और बाद में आपसे मिलने आ गया। पर तो बड़े खुश हुए ब्रह्मा जी, बड़े खुश हुए। तो ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसको खूब दान दे दिए, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र को भी दान दे दिए रावण को। बहुत रावण खुश हुआ। रावण ने सोचा स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट, अभी परदादा जी बड़े खुश हैं, तब मांग लेता हूं सब चीज। तो परदादा से कहा कि देखिए आप हमको अमरत्व का वरदान दे दो। ये पता नहीं असुरों में सबसे ये लगा रहता है, वो अमर ही होना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप भी वैसे हैं, ये रावण भी, खैर दोनों एक ही थे, लेकिन हम लोग भी उसके नाती पोते हैं, हमें से कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना चाहता है यहां पर? कोई नहीं। अरे कह रहे हो ना, कोई गोल लेकर आया तो भागना का तैयार करोगे, कोई दाऊद का फोन आएगा तो पुलिस के पास पहुंचोगे कि हमको फोन कर रहा है, कह रहा मैं मरूंगा। ये देखो कोई नहीं मरना चाहता है, रावण प्रवृत्ति है। भक्तों के लिए जियो वा मरो वा, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। उनका एक ही तकलीफ है यदि हरि भजन न हो तो। हरि भजन होना चाहिए और चलेगा, कोई बात नहीं। जियो वा मरो वा, जिएंगे तो भी ठीक, मरेंगे तो भी ठीक। वो ढेंकी होती है, ढेंकी देखा? ढेंकी कितने लोग ढेंकी देखे हो, गांव वाले देखे होंगे। वो ढेंकी यदि स्वर्ग में भी जाएगी तो क्या करेगी? धान कुटेगी, और क्या करेगी। वैसे ही साधु लोग कहीं भी जाएंगे, नारायण परासर्वे नकुदस्तत्न विपते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, कहीं भी जाएंगे वहां भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन रावण और रावण के नाती पोते मरना नहीं चाहते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, तू बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हमसे वरदान मांग रहे कि तुम मरना नहीं चाहते हो। देखो सही बात यह है कि मैं भी नहीं मरना चाहता हूं, एक खानदानी रोग है, चिंता मत करो। लेकिन करूं क्या, मुझे भी मरना पड़ेगा। जब मैं स्वयं मरने वाला हूं, तुम्हें अमृत का वरदान कैसे दे सकता हूं? तो कहा परदादा जी बताइए, कुछ तो होगा। तो कहा हां, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। हां ये बता दीजिए, फिर तो मैं देख लूंगा। ये बता दो कि मेरा मृत्यु कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, दशरथ का विवाह होगा कौशल्या से, और कौशल्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा, वो तुमको मारेगा। रावण दशरथ जी का समवयस्क था, एक ही एज के थे रावण और दशरथ जी। अब ब्रह्मलोक से आते हुए रावण भी यूपी का ही था, बाय द वे यूपी का था। हाँ दशरथ जी यूपी के, वो भी यूपी का, दोनों एक ही जगह के थे। पुलस जी वहीं के थे ना, पुलस जी यूपी के ही थे। वो नाम भी, गांव का नाम भी है मेरे पास है, रावण का विश्रवा और कैकेसी का पुत्र था, ये बिसराख गांव कोई है, पता नहीं अभी है कि नहीं, बिसराख पुरवा कोई है गांव यूपी में, रावण वहीं का था, वो तो लंका बाद में मिला उसको, वो तो भगवान शिव ने बनाया था लंका को पार्वती जी के लिए। खैर वो कहानी अलग है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी हम लोग यहां पर राम जन्म के विषय में आज बात करेंगे, इन श्लोक पर बात करना है जो यहां पर लिखा हुआ है। तो अभी तो भूमिका बना रहा हूं, अरे 8:45 तो बज गए हैं भूमिका बनाने में, शॉर्टकट करना पड़ेगा। हां तो क्या बात हो रहा था रावण का? तो रावण आते समय आ गया कौशल, उत्तरी कौशल, और वहां से उसने प्लान किया कि कौशल्या को हर कर ले जाऊंगा और उसका गला काट दूंगा। तो न रहे बांझ न बांसे बांसुरी। तो साथ में उनकी पत्नी थी मंदोदरी जी, बड़ी साध्वी सती थी। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये जघन्य पाप आप मत करना, ये स्त्री बद का पाप आप मत करो, कोई दूसरा उपाय निकालो। ऐसा करो कि अपने अन्य असुरों को भेज कर करके और इसका हरण करा करके और असुरों से विवाह करा दो, या कुछ भी करा दो, असुरों काम है हरण करना, विवाह करना, सब कुछ। तो रावण ने कहा ये बुद्धि तूने अच्छा दिया, ऐसे भी हमेशा मंदोदरी जी अच्छा ही बुद्धि देती थी, सती नारियों में से एक है मंदोदरी जी। तो इस प्रकार से रावण गया और रावण अपने कुछ असुरों को भेजा कि जाओ तुम लोग कौशल्या का हरण कर करके लेकर आओ। वे असुर लोग आए, विभिन्न प्रकार का रूप धारण करने में बड़े एक्सपर्ट थे, वो कौशल्या का हरण कर 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 लेकर गए और ऊपर विमान से कौशल्या को गिरा रहे थे नीचे सरयू में। मध्य रात्रि का समय था, महाराज दशरथ उस समय उधर से ही निकल रहे थे। महाराज दशरथ उन असुरों से बहुत लड़ाई किए, लेकिन असुरों का बल रात में बढ़ जाता है और इच्छाधारी होते हैं, किसी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। तो महाराज दशरथ सोचे कि इन लोगों से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। तब तक से कौशल्या को लकड़ी के पेटी में कौशल्या को रखे थे और गिरा दिए। तो महाराज दशरथ समझ गए कि इसमें कोई प्राणी है, स्त्री या पुरुष कोई है जिनको इन लोगों से खुन्नस है और इसे खत्म करना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ तुरंत अपने नौका पर से कूद करके और तैरने लगे उस लकड़ी के बक्स को बचाने के लिए। लेकिन दशरथ लकड़ी का बक्स बहुत दूर चला गया था और महाराज दशरथ तैर रहे थे बड़े जोर से। सरयू जी जहां गंगा में मिलती है लगभग वहां ये बक्स चला गया, और जब नदियां एक दूसरे नदी से मिलती है तो धारा प्रवाहित ज्यादा हो जाती है, धारा का प्रवाह था तो लुप्त हो गया और महाराज दशरथ बेहोश जैसे पड़ गए। उसी समय जटायु जी वहां से जा रहे थे तो महाराज दशरथ को देखे और पहचान गए, क्योंकि पुराने दोस्त हैं दोनों। तो जटायु जी तुरंत महाराज दशरथ को निकाले और अपने पंख पर लेकर के और स्थल पर लेकर के आए पानी से, और उनको शक्ति संचारित किए। जब शक्ति संचारित किए तो दशरथ महाराज थोड़ा होश होश में आए और पूरा वृतांत सुनाए महाराज दशरथ की क्या हुआ है। जटायु से कहा कि अब समय नहीं है, जल्दी चलो और उस लकड़ी के बक्स को लेना जरूरी है, वो हमारी प्रजा है कोई जिसका ये असुर लोग वध करना चाहते हैं। मैं किस काम का राजा यदि प्रजा का रक्षा नहीं कर पाया। तो जटायु जी तुरंत दशरथ महाराज को अपने पंख पर बैठाए और बड़े वायु के वेग से गए तो गंगा के किनारे एक टापू पर, टापू में वो लकड़ी का बक्स जो था लग गया था। तो जटायु जी और दशरथ जी उसको उठा करके लाए टापू के ऊपर, जब खोले तो उसमें से कौशल्या दिखाई पड़ी। दशरथ जी का तो प्रेम था ही कौशल्या से, कौशल्या को जानते थे, परिचित चेहरा था, तो बेहोश जैसे हो गए। इधर कौशल्या भी बेहोश पड़ी हुई है, दशरथ जी बेहोश पड़े हैं, अच्छा जोड़ी लग गया है दोनों आदमी का। अब नारद जी वहां टपक पड़े, सबका कल्याण करते हैं नारद, जिनका काम है नर्द भगवान को देने वाले हैं। तो नारद जी आ गए, क्योंकि भगवान आने वाले थे दोनों से, अब दोनों बेहोश पड़े हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी आकर के अपने शक्ति से दोनों को जीवित किए, मूर्छा से बाहर लाए। तो नारद जी ने कहा जटायु जी से कि देखिए मैं सब बात समझ रहा हूं ये क्या हो रहा है, लेकिन नारद जी ने रिवील नहीं किया। नारद जी रिवील नहीं किए, कौल कहे मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मेरी इच्छा है जटायु जी कि दशरथ जी का और कौशल्या का अभी विवाह कर दिया जाए, चटमंगनी पर विवाह फटाफट कर लो, देर मत करो। तो वहीं पर स्वस्तिगान हुआ, सब कुछ हुआ, और जटायु जी और नारद जी जो ही विवाह के लिए ये बात कहे, तब तक से तुरंत दशरथ जी के ननिहाल वाले वहां पर पहुंच गए। समझ रहे हैं मतलब क्या? ननिहाल वाले कौन दशरथ जी के हुए? अरे बोलो तो, हुकारी भरो, सुन नहीं रहे हो? देवता लोग, क्योंकि उनकी माता जो थी वो देवलोक की अप्सरा थी, तो यानी सब देवता लोग वहां पर आ गए। समस्त देवताओं के सानिध्य में नारद जी जैसे पक्का ब्रह्मचारी विवाह कराए, यानी गंधर्व विवाह कराए। विवाह होने के बाद में दोनों वरवधु को नारद जी समस्त देवताओं के साथ में वहां से अंतर्धनित हो गए, और जटायु जी कौशल्या और दशरथ को अपने पंख पर चढ़ा करके लेकर के आए, अयोध्या लेकर के आए, और वशिष्ठ जी से सब बात कहे। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, और वशिष्ठ जी और सुमंत जी मिलकर के उनका विवाह संपन्न कराए। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ महाराज दशरथ का और कौशल्या का। कालांतर में महाराज दशरथ और कौशल्या को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था शांता, लेकिन वह पुत्री एक पैर से अपंगी थी। आजकल कहते हैं पोलियो का शिकार है, पोलियो का इंजेक्शन नहीं दिया, इसलिए तो वैसे ही समझ लीजिए एक पैर से अपंगा थी शांता। महाराज दशरथ बड़े चिंता में पड़ गए कि प्रथम संतान हुआ वो भी अपंगा हो गया, तो राजवैद्य जो थे जितने लोग थे सब आकर के सब प्रकार से दवा किए, लेकिन उस बच्ची का पैर ठीक नहीं हो पाया। तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से अपने दिल के बात को कहे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए इस बच्ची में कोई बीमारी नहीं है कि दवा कराकर आप ठीक कर सकते हो, एक गोत्र भेद से वो ठीक हो सकता है। क्या है कि आपका विवाह एक ही गोत्र में हो गया है, कौशल्या जिस गोत्र की है उसी गोत्र के आप हो, वो भी सूर्यवंशीय क्षत्रिय की पुत्री और आप भी सूर्यवंशी हो, तो दोनों सूर्यवंशी हो, एक ही गोत्र वाले हो, इसीलिए ये विवाह उचित नहीं है। तीर्थपाद जी बात है ना, गर्ग और गर्ग गोत्र में शादी होता है कभी? आजकल होता है, पहले नहीं होता था ना, पहले नहीं होता था, एक गोत्र में शादी नहीं होता था, आजकल होता है। आजकल तो लोग कुत्ते बिल्ली से भी शादी कर लेते हैं, वो दूसरा बात है। आजकल लोग कुत्ते से शादी कर लेते हैं, कितनी लड़कियां कुत्ते शादी करके रहती है, वो लड़की लड़की से शादी करती है, लड़का लड़का शादी करता है, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, वो भूल जाओ, मैं शास्त्र का बात कह रहा हूं। तो एक गोत्र में पहले शादी बहुत बड़ा एक चीज था, लड़की का गोत्र देखना, लड़का का गोत्र देखना, उन लोगों का सौभाग्य देखना, कितना मिल रहा है, गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हजार चीज था। आजकल तो मियां बीबी राजी तो क्या करे, घर के काजी हो गया काम, यही हो रहा है, एक कलयुग आ गया है, केवल पसंदगी से विवाह होगा। यानी ये तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपका विवाह जो हुआ है उचित नहीं हुआ है, एक ही गोत्र होने से ऐसा हुआ, लेकिन गोत्र भेद हो जाए तो लड़की ठीक हो सकती है, यानी दूसरे गोत्र के पास दे दिया जाए। तो महाराज दशरथ सोचे कि हमारे साढ़ू भाई, बड़े साढ़ू भाई हैं रोमपाद जी, रोमपाद महाराज अपने रुमपद महाराज नहीं, वो रुमपद थे, वो अंग देश के राजा यानी बंगाल, आज बंगाल और बांग्लादेश को अंग देश कहा जाता था, तो वहां के राजा थे। तो महाराज रोमपाद शांता को गोद ले लिए और उसके बाद महाराज दशरथ सोचे कि अब इनसे संतान उत्पन्न करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि संतान पुनः उत्पन्न करेंगे तो हो सकता है और कुछ हो सकता है, कोई अन्हा होगा, बहरा होगा, गंदा होगा, तो अब संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। तब महाराज दशरथ ने सोचा कि ठीक है अब दूसरा विवाह करेंगे। तो मगध नरेश की पुत्री, महाराज शूर थे, मगध के राजा थे महाराज शूर, जिनकी राजधानी काशी थी, तो काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा थी। सुमित्रा का बहुत ही सुंदर स्वभाव था, कौशल्या के अनुरूप था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा था कि सबसे अनपेक्षित थी, कोई अपेक्षा नहीं रखती थी और सबसे मित्रता रखती थी। सबसे मित्रता वही रख सकता है जिसे कोई अपेक्षा न हो। यदि अपेक्षा होगा तो मित्रता में खटास आज नहीं तो कल आ ही सकता है। सुमित्रा का कितना गुणगान किया जाए कम ही होगा। वाल्मीकि जी खूब गुणगान किए हैं सुमित्रा जी का। महाराज दशरथ तीनों रानियों के लिए अलग अलग राजमहल बनाए थे। आप लोग सुने होंगे कि कैकेयी जी जो ड्रामा की थी वो अपने राजमहल में की थी, कुप भवन में। सुमित्रा का जो राजमहल था, सुमित्रा जी एक दिन भी अपने राजमहल में नहीं रुकी। वो कही कि नहीं, मैं दीदी से अलग नहीं हो सकती हूं, और राजमहल को त्याग करके और आकर के तुरंत कौशल्या के राजमहल में रहने लगी, कौशल्या का सेवा करने लगी। सुमित्रा का भाव था ही केवल सेवा भाव, वो सेवा करती थी। बड़ी सुंदर सुशील पत्नी थी सुमित्रा। तो महाराज सूर के यहां जब प्रस्ताव गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार से सुमित्रा का विवाह हुआ महाराज दशरथ थे। सुमित्रा और दशरथ को भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। महाराज दशरथ बड़े फेरे पड़ गए, अब क्या किया जाए। तब महाराज अश्वपति जो कैकेयी देश के राजा थे, आजकल उसे यूक्रेन कहा जाता है, यूक्रेन के कैकेयी थी, कैकेयी देश कंबोडिया वहां की कैकेयी थी। तो कैकेयी देश के राजा थे महाराज अश्वपति, वहां के घोड़े बड़े श्रेष्ठ होते हैं इसलिए उनका नाम ही था अश्वपति। कैकेयी के सात भाई थे और ये एकलौती बहन थी सात भाइयों में। महाराज अश्वपति में एक अच्छा गुण था, जब कोई पक्षी आपस में बात करते हैं तो पक्षी के बातों को महाराज अश्वपति समझ लेते थे कि लोग क्या बात करते हैं। आप लोग समझ सकते हो, कौ आपस में बात करते काव काव काव, समझ सकते हो, मोर बात करते हैं समझ सकते हो नहीं, लेकिन महाराज अश्वपति में खूबी था कि वो जान जाते थे क्या बात कर रहे हैं। एक समय की बात है, महाराज अश्वपति और उनकी धर्मपत्नी राजभवन के उद्यान में बैठे हुए थे और उस समय एक बतक देखे हो ना, हंस के छोटे, तो ये बतक लोग कामातुर थे, रति क्रीड़ा में लगे हुए थे और रति क्रीड़ा में एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे हम लोग इस संसार में जब लड़का लड़की रति क्रीड़ा में लगते हैं, कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो ऐसे ही वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वही बोलती आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो यह सुन करके महाराज बड़े जोर से हंसे, कह रहे देखो जैसे मनुष्यों में फीलिंग है वैसे ही फीलिंग इन पक्षियों में भी है। और वहीं पर महारानी बैठी हुई थी, तो स्त्रियों को ऐसे भी शंका होता रहता है, तो ये थोड़ा हंस के आ दिए और सब गड़बड़ हो गया। और रानी समझी कि हम पर हंसे हैं कुछ, तो रानी ने पूछा क्यों आप हंसे, क्या मेरा गलती हो गया क्या? अरे क्या महारानी क्षमा करो, तुम्हारे लिए नहीं मैं हंसा हूं, तुम्हारे पर नहीं हंसा हूं। तो कहा क्यों हंसे? तो कहा मैं देखा ये जो दो बतख आपस में ये कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? देखिए उनको ये ज्ञान था, उनको आशीर्वाद था कि पक्षी जो भी बात करें उसको वो जान सकते हैं, लेकिन दूसरे को बता नहीं सकते हैं। जो ही बताएंगे उनका मृत्यु हो जाएगा। ये श्राप भी था, वरदान भी था और श्राप भी था। पहले के राजा लोग ऐसे ही सेक्रेट एजेंट रखते थे, छिपकली छिपकली बात कर सकती थी, सुन सकते थे राजा लोग, समझ सकते थे। कोई राजा छिपकली के बात को समझ सकते थे, कोई राजा दूत भेजते थे तोता को, है? तो अलग अलग तरीका था सेक्रेट पता लगाने के लिए। तो ये पता लगा लेते थे जो पक्षियों के बात से। रानी को भली भांति यह मालूम था कि राजा यदि बता देंगे कि ये दोनों क्या बात कर रहे थे तो इनका देहांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बाल हठ और स्त्री हठ बड़ा खतरनाक होता है। वो हठ पर आ गई कि नहीं, आपको बताना ही होगा कि ये क्या बात कर रहे थे, आप हमारे विषय में ही हंस रहे थे। राजा बहुत प्रयास किए बताने के, नहीं रानी आपके विषय में नहीं हंस रहा था, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, इनके बात को सुनकर हंस रहा था। तो पीछे पड़ गई रानी, बताना ही पड़ेगा, बताइए। तो राजा को गुस्सा हुआ कि मूर्ख कहीं का, तुम जानती हो कि मैं यदि बता दूंगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, इसका मतलब कि तुम्हें मेरे लिए कोई केयर नहीं है, यू डोंट केयर फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कोई चिंता नहीं है कि मैं मरूं या जीऊं। तो ऐसे पत्नी को घर में रखकर क्या फायदा? ऐसे पत्नी को जो अपने पति का केयर न करे, चाहे अंडे में जाए मरे, खाए न खाए, मरना जाए, तो ऐसे पत्नी रखने क्या फायदा? तो राजा ने उसको घर से निकाल दिया, कैकई की मां, कैकई छोटी थी, और निकाल दिया, कैकई के ननिहाल भेज दिया, डिवोर्स नहीं लिया, तलाक नहीं दिया। अपने हिंदू धर्म में डिवोर्स तलाक नहीं होता है, सेपरेशन है, अलग रह सकते हो, ये मुसलमानों का और क्रिश्चियन लोगों का है, है? तो कैकई बड़ी छोटी थी तो उसे मां का स्नेह नहीं मिला, लेकिन मां के समान ही एक वहां पर थी जिसका नाम था, फेमस नेम, मंथरा। तो मंथरा बचपन से ही कैकई का भरण पोषण की, विवाह के बाद भी हुआ। तो इस प्रकार से कैकई बड़ी सुंदर थी, श्यामल थी लेकिन सुंदर थी, गुणवती भी थी। तो जब अश्वपति से महाराज दशरथ प्रस्ताव भेजे उनके पुत्री का हाथ मांगने के लिए, तो अश्वपति ने कहा कि ठीक है, एक शर्त पर मैं अपना पुत्री तुम्हें विवाह में दूंगा, क्यों ऑलरेडी तुम्हारी दो पत्नियां हैं तो तीसरी मतलब सौत होगी, कोई फायदा नहीं है। यदि हो ना हो, तुम भी जवान हो, पत्नियां भी जवान हैं, यदि उन लोगों से कोई बच्चा हो जाए तब गड़बड़ हो जाएगा। तो अश्वपति ने कहा कि मेरे पुत्री से जो बच्चा पैदा होगा वही अवध का राजा होगा, वही अवध अयोध्या का राजा होगा। यदि यह बात तुम स्वीकार करते हो तो मैं अपने पुत्री को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो महाराज दशरथ को तो एक हेयर चाहिए था, एक यू नो खानदान चलाने के लिए एक चिराग चाहिए था। कहे कोई बात नहीं, मरता क्या नहीं करता, स्वीकार कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ की तीन पत्नियां हुई, जिनमें से सबसे बड़ी पत्नी थी कौशल्या, दूसरी थी सुमित्रा और तीसरी थी कैकई। महाराज दशरथ के राज्य का वर्णन किया गया है। उनका राज्य बहुत विस्तृत था, अयोध्या का राज्य, इसकी लंबा अयोध्या की लंबाई का वर्णन किया गया है कि 120 मील लंबा था और 30 मील चौड़ा था, अयोध्या का मतलब होता है जिसे कोई तोड़ फोड़ ना सके, वह है अयोध्या। महाराज दशरथ के अनेक मंत्री थे, 10 मंत्री थे और महाराज दशरथ के 10 पुरोहित थे, जिसमें से वशिष्ठ जी प्रधान थे और मंत्रियों में सुमंत जी प्रधान थे। तो इस प्रकार से एक दिन महाराज दशरथ की इच्छा हुई, 15 मिनट और चलेगा ठीक है ना, नहीं ये प्रसंग खत्म करते हैं, अभी तो मैं बैकग्राउंड कर रहा था कैसे ये लोग आए, दशरथ कौन थे सब बता दिया, पूरा हिस्ट्री बता दिया, अब ज्योग्राफी में जाते हैं, ज्योग्राफी बता दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो महाराज दशरथ को पुत्र की बड़ी चिंता थी, वो एक पुत्र चाहते थे किसी प्रकार से कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। तो बैठे बैठे महाराज दशरथ सोच रहे थे और जाकर के अपने इस बात को अपने गुरु वशिष्ठ के समक्ष रखे। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, देखो ये भक्त लोग होते हैं सब चीज के प्राप्ति के लिए भगवान के शरण में जाते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। ये नहीं कि सोमवार को इनका पूजा करेंगे शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को इनका, शुक्रवार को इनका, शनिवार को शनि देवता का, अलग अलग लॉटरी लगाते रहेंगे, एक तो लॉटरी पड़ेगी। भक्त लोग लॉटरी नहीं लगाते हैं, जो भी काम हो, सुख हो दुख हो, अकाम हो सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदारधि, तिब्रेण भक्ति योगे न जेत पुरुष अपरम, परम पुरुष के पास जाते हैं। दशरथ जी महान भक्त थे जिनके बेटा हुए भगवान स्वयं, भगवान के बाप थे दशरथ जी, तो नेचुरली भक्त होंगे। तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विचार किया। उस समय त्रेता युग में यज्ञ था, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेताम यता मकई जजता मकई, यज्ञ था इंपॉर्टेंट, तो वे एक यज्ञ करना चाहते थे और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ करने का इच्छा किए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि ठीक है अश्वमेध यज्ञ किया जाए, और तुरंत व्यवस्था के लिए वशिष्ठ जी कह दिए सभी ऋषियों को बुलाया जाए, ऋषियों से मंत्रणा लेना चाहिए। वशिष्ठ जी फिर भी परम पुरोहित थे, परम गुरु थे, लेकिन अन्य ऋषियों को बुलाया जाए और सब लोगों से ये वार्ता करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी थे और लोग थे, सब लोगों से बात कर करके और तब इस पर निर्णय किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब सब लोग अपने अपने यहां चले गए तो सुमंत जी एकांत में मिले महाराज दशरथ से, और महाराज दशरथ से मिल करके कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, भले ही मैं आपका प्रधानमंत्री हूं लेकिन मैं बहुत दिनों से हूं, एक बार मैं देवताओं के मुख से कथा सुना था और वह कथा ब्रह्मा जी के पुत्र चतुष्कुमार लोग सुनाए थे, और उस कथा में आपके संबंधी कुछ बातें थी जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। महाराज दशरथ तैयारी कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ का, लेकिन पुत्रिष्टि यज्ञ का तैयारी करना बाकी था, एक साथ में दो यज्ञ हुआ था। तो दशरथ की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ हुआ, और जब सुमंत जी बतलाए तो सुमंत जी के कहने के बाद दशरथ जी इच्छा प्रकट किए पुत्रिष्टि यज्ञ का, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। तो सुमंत जी ने बताया कि वे सुने थे, देखिए बहुत पहले सुने थे, सब गा में आएगा भविष्य काल में, कि अंग देश के एक राजा होंगे, उनका नाम होगा रोमपाद। रोमपाद के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा, सब प्रजा त्राहिमाम 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 करेगी। तो ऋषियों के सलाह से वे विभांडक मुनि एक हैं जो कि प्रजापतियों में से हैं, कश्यप के ही बेटे हैं विभांडक जी, उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा ऋषि श्रृंग। विभांडक मुनि बहुत बड़ा तपस्या करेंगे और उनके तपस्या के भय से इंद्र भयभीत हो जाएगा और इंद्र भयभीत होकर के अपने प्रमुख वेश्याओं में से प्रमुख अप्सराओं में से उर्वशी को भेजेगा, सुंदरी उर्वशी को, और विभांड और उर्वशी के संयोग से यह श्रृंग ऋषि का जन्म होगा। तब तक से ऋषि का जो व्रत था वो टूट गया और उसके बाद वह वेश्या जो अप्सरा जो है वह विभांड ऋषि को छोड़ करके चली जाएगी। विभांड ऋषि को स्त्रियों पर कोई विश्वास नहीं होगा, उन्हें बहुत गुस्सा होगा, इसलिए अपने पुत्र श्रृंग को अपने साथ हमेशा रखेंगे, कभी भी स्त्रियों का दर्शन नहीं होने देंगे, कभी किसी पुरुष से नहीं मिलने देंगे, शहर का तो नाम ही नहीं जानते हैं, वो केवल जंगल में ही रहेंगे। तो मैं 4 अध्याय को 10 मिनट में कहने का प्रयास कर रहा हूं वाल्मीकि रामायण से। तो किसी प्रकार से यदि ऋषि श्रृंग को वे लोग लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पुरोहित लोग या सामंत लोग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो महाराज रोमपाद वेश्याओं को भेजेंगे और वेश्याएं उनको प्रलोभित कर कर करके और लेकर के आएगी। बाद में जब ही आएंगे अंग देश, घमासान वर्षा होगा और अंग देश के राजा अपने पुत्री शांता का विवाह उससे करेंगे। तो यहां तक बात बताए, फिर दूसरे दिन कहे कि देखिए महाराज, ये बात अब तक से सत्य हो गई है, सत्य हो गई थी। महाराज रोमपाद वेश्याओं को भेजे थे, वेश्याएं अपना कैंप लगा करके वहीं पर रहती थी जहां पर विभांडक मुनि का आश्रम था, वहीं पर बाहर रहती थी वेश्याएं। तो क्या करूं, कथा लंबी है, एनीवे चलो वो कभी बाद में कहेंगे। एनीवे तो वो लाए, अब मैं सब काट देता हूं। तो पूरा सुनने के बाद दशरथ जी अपने मंत्री को, नहीं समन जी ने कहा कि आपको स्वयं अंग देश जाना पड़ेगा, विवाह हो गया था शांता से, जमाता शब्द आया हुआ है, जमाता मतलब दामाद, वो आपका ही दामाद है, तव जमाता आपके ही वो दामाद है। तो वे रोमपास के पास अंग देश गए दशरथ महाराज और ऋषि को लेकर के आए। एक साल के लिए जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो अयोध्या नगरी छोड़ करके सरयू के उत्तरी तट पर नया अयोध्या, न्यू अयोध्या बसाया गया था जहां पर यज्ञ होने वाला था। और वशिष्ठ जी को पूरा कार्यभार दे दिए थे दशरथ महाराज, कह के ये सब काम आप कराइए, आपका काम ये है, लड़ाई झगड़ा करना वो हमारा काम है, ये यज्ञ सब करना आपका काम है। तो वशिष्ठ जी बहुत अच्छा व्यवस्था कराए, नया शहर बसा दिए, साधु महात्माओं के रहने के लिए अलग, ऋषियों के लिए अलग, अतिथियों के लिए अलग। एक साल बीत गया, यज्ञ का घोड़ा घूम करके आ भी गया, अब यज्ञ संपन्न होने वाला था। तो विभिन्न देश के राजाओं को बुलाया गया, कई कई देश के राजा को बुलाया गया, कौशल देश के राजा को बुलाया गया, मगध देश के राजा को बुलाया गया, महाराज जनक को भी बुलाया गया, क्योंकि रामायण की कथा है। रामायण का मतलब होता है राम अयण इति रामायण और रामा अयण इति रामायण, राम का प्रस्थान या रमा यानी सीता का प्रस्थान या राम सीता दोनों का प्रस्थान, और अयण का मतलब निवास भी होता है। तो राम अयण मतलब राम का निवास और रामा अयण मतलब सीता का निवास। सो रामायण में राम और सीता दोनों का निवास है, इसलिए हम लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए जिसको राम सीता को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से सब लोगों को बुलाए और वशिष्ठ जी सुमन जी को स्वयं कहे कि ये जो लोग प्रमुख राजा लोग हैं, कैक एक नरेश हैं, जैसे अशुपति कौशल नरेश हैं, मगध नरेश हैं, जनक नरेश हैं, इन लोगों को आप स्वयं जाइए और अन्य राजाओं को बुलाने के लिए दक्षिण भारत से अन्य जगह से जो पूर्वी राज्य के राजा लोग सब लोगों को खत भेजा गया बुलाने के लिए। सब राजा लोग आए, सबका खूब स्वागत हुआ, बड़े धूमधाम से अश्वमेध जग हुआ। स्वाभाविक है, हमारी भारतीय परंपरा रही है कि जब भी कभी घर में त्योहार हो, फंक्शन हो, सब सगे संबंधी को बुलाते हैं, विवाह हो, कुछ भी हो, तुम्हारा दशरथ सबको बुलाए थे। अब यज्ञ संपन्न हो गया, सब लोगों खूब महाराज दान दिए, अपना सर्वस्व दान दे दिए, एक छटाक अपने लिए नहीं रखे, पूरा पृथ्वी दान दे दिए ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण लोग भी कोई लोभी ब्राह्मण नहीं थे, संतोषी ब्राह्मण थे। कहे महाराज, इस सबसे हम लोगों का काम है, हम तो राजा नहीं है, हम तो राज नहीं चलाना जानते हैं, आप अपना राज अपने पास ही रखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको दे दिया, लेकिन अपने ही पास रखो। यहां तक कि लास्ट में एक ब्राह्मण आया था मांगने के लिए, महाराज पास कुछ भी नहीं था, अपना कंगन निकाल करके दे दिए थे। ऐसे थे महाराज दशरथ, बड़े बदान्य थे, देने में शिरोमणि थे। वैसे ही भगवान और उनके राज में सब लोग खुशहाल थे। उन महलों का वर्णन किया गया है जो बनाया गया था सबके लिए, उसमें क्या क्या वस्तु था, स्विमिंग पूल था, खाने पीने का सब वस्तु था, क्या क्या नहीं था, सब कुछ था। तो एक जग खत्म हुआ, अब दूसरा जग, पुत्रेष्टि जग। अब इस जग से सब देवता लोग प्रसन्न थे, जितने ऋषि सब प्रसन्न थे, ऋषि श्रृंग बड़े प्रसन्न थे। तो महाराज दशरथ बड़ा सावधानी से कहते हैं, बुलाए थे तो यज्ञ के लिए, इसमें यज्ञ के लिए, लेकिन कराना था कोई दूसरा यज्ञ उनसे, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो महाराज दशरथ बड़े प्रेम से निवेदन किए कि यदि आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं चाहता हूं कि हमें संतान की इच्छा है। तो तुरंत वे तैयार हो गए ऋषि श्रृंग कि हां मैं यज्ञ कराऊंगा, और इतना खुश हो गए कहे कि महाराज मैं यज्ञ कराऊंगा, भविता चत्वारो पुत्रान, आपको चार बेटे होंगे। अरे इनको तो एक बेटा चाहिए था, ऋषि ने कहा तुमको चार बेटा होगा। सनत कुमार ने ही पहले कहा था कि दशरथ महाराज को चार बेटे होंगे। अब देवता लोग बड़े खुश थे, सबको यज्ञ का भाग मिला हुआ था, दशरथ महाराज पर बोनस में वे लोग चाहते तो कुछ आशीर्वाद देना। नेचुरली जब कोई खुश होता था, बोलो भाई क्या चाहिए, माधवा क्या चाहिए, चलो तुमको देता हूं, है मांग लो जो चाहिए। तो देवता लोग भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी आपका जो चेला नाती पोता जो रावण है बड़ा परेशान करके रखा है। अरे हम लोगों को इतना भय है, सूर्य नहीं उग पाते हैं, वायु नहीं जोर से बह पाते हैं, ऋषि महर्षि साधु ब्राह्मण सबको त्राहिमाम त्राहिमान कर रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा हाथ बंधा हुआ है, मेरा पोता है और साथ साथ मैं वरदान दे दिया हूं, लेकिन एक बात है, जो अमृत का वो वरदान मांग रहा था तो वो मांगा कि किसी से वो नहीं मारा जाए, लेकिन मनुष्यों का वो कदर नहीं करता था, तो मनुष्य और बंदर का बात नहीं बोला है, तो उसे आज के दिन कोई नहीं मार सकता है, यदि कोई मार सकता है तो मनुष्य मार सकता है, बंदरों के साथ में, बंदर और मनुष्य मिलकर के, तब इसके लिए भगवान के पास चला जाए, भगवान ही मार सकता, हम में से कोई देवता में समर्थ नहीं है, तब लोग कांप रहे हो, पूंछ दबा के बैठे हुए हो, तुम में से कोई नहीं मार सकता, चलो भगवान के पास चले। ब्रह्मा जी के साथ में सब क्षीर सागर पर गए और जाकर के विष्णु सहस्त्र नाम का स्तुति किए, भगवान आए, देवताओं से बड़े प्रसन्न थे। अब देवता त्राहिमाम करते सष्टांग धनवत प्रणाम किए भगवान को, कहे भगवान आप ही रक्षक हो, रक्षा करो। क्या बोलो, क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा? अभी आपको जाकर के दशरथ के चार पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, कैसे करना आप जानो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों का आप रक्षा करो, अधिकार होता है तो कह देते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग निर्भर रहो, जाओ आराम करो, खा पी करके सो, मैं सब देख लूंगा। लेकिन भाई ये बताओ कि दशरथ का बेटा मैं बनूंगा, लेकिन रावण मारा कैसे जाएगा? भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि दशरथ का पुत्र बनूंगा, किस रूप में, मनुष्य रूप में बनू, पशु रूप में बनू, कैसे बनू, कौन? तो उन्होंने कहा नहीं, उसको मनुष्यों से भय नहीं है, तो आप मनुष्य का रूप धारण करो। तो देवलोक में तैयारी हो गई, भगवान बिल्कुल तैयार हो गए। उसी समय ऋषि श्रृंग ए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। जब पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हो चुका, तो भगवान समाप्त होने से पहले दशरथ जी को आवेशित कर लिए। दशरथ जी आवेशित हो गए और यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और सोने का कटोरी में खीर लेकर के आए और कहे कि हे महाराज दशरथ, ये देवताओं के द्वारा देव निर्मित इदम पायसम, ये जो खीर है वो देव निर्मित है, ये आप लीजिए और अपने पत्नियों को बांटिएगा और उसे चार पुत्र उत्पन्न होंगे। महाराज दशरथ उसको लेकर के से उद्धार किए, सिर पर लगाए, प्रणाम किए, अग्निदेव का परिक्रमा किए और अग्निदेव वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज दशरथ के दिमाग में चक्कर आ गया, कह रहे तो अग्निदेव बताए नहीं, पत्नियां हमारे पास तीन ही हैं, चार बेटे उत्पन्न होंगे, तीन से चार उत्पन्न करना है और वो भी इस खीर को बांटने से, तो किसको कितना खीर दूं, चक्कर हो गया ना, किसको कितना खीर दूं। गुरु वशिष्ठ भी नहीं बता सकते हैं इस बात में, क्योंकि इंटरनल बात है, अंदर का बात है, वहां सुमंति से भी सलाह नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस समय टोटली राम कॉन्शियस थे, तो भगवान राम बता रहे थे कैसे। माधव तुम बताओ, यदि तुमको कोई सोने के थाली में खीर लेकर के आए, तुम्हारी चार पत्नियां, कल मान लो पत्नियां चार नहीं है, अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, तो तू कैसे बांटोगे? नो आइडिया ही। चलो राधिका कन्हाई ब्रह्मचारी जी, कैसे बांटोगे? चार में बांटना है, असीम जी ब्रह्मचारी जी कैसे बांटोगे आप? असीम जी कहते हैं बराबर बराबर बढ़ते, तीन ही है ना, तो एक कहां से दूसरा को साझ थोड़े करने जाएंगे, चार पत्नियां चाहिए ना, चार चार पुत्र के लिए, तो तीन से ही चार पैदा करना है बच्चा, कैसे बांटोगे? एनीवे विभिन्न प्रकार से लोग अपना स्पेकुलेशन करते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी बिल्कुल स्पष्ट किए हैं। कोई लोग कहते हैं कि कौशल्या जी को आधा भाग दे दीजिए और आधा भाग दे दिए कैकेयी को, क्योंकि सुंदरी कैकेयी थी, छोटी रानी थी है? और बड़ी कौशल्या जी थी, तो उन लोगों ने अपना आधा आधा दे दिया सुमित्रा को। तो यदि ऐसे देखा जाए, चलो ये आप लोग नहीं समझोगे, रुपया पैसा जल्दी समझोगे, है ना, यदि एक रुपया है उसको चार भाग में बांटना है, तो जो लोग कहते हैं कि आधा दे दिया कौशल्या को, यानी 50 पैसा कौशल्या को दे दिया और 50 कैकेयी को दे दिया और उन लोगों ने आधा आधा दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 25 इच, राइट, 25 इच हो गया ना। सिद्धांत के अनुसार एक गलत है, क्योंकि भगवान श्री राम के ये लोग अंश हैं, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, एते चान सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हैं और राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके नीचे थोड़ा है। राम में भी लक्ष्मण जी जो हैं वो भगवान के आधार हैं, शेषनाग, और भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो क्रमशः भगवान के चक्र और गदा हैं, आयुध हैं। तो आप समझ लो भगवान विष्णु हैं, शेषनाग हैं, चक्र और गदा हैं। अब खीर कैसे बैठेगी आप बताओ, मैं हिंट दे दिया, ये सिद्धांत है। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि भगवान राम श्रेष्ठ है, तो कौशल्या को ज्यादा खीर मिलना चाहिए। सेकेंड, शेषनाग श्रेष्ठ हैं, जहां भगवान शयन करते हैं, तो सेकेंड हाफ जो होना चाहिए किसकी मिलना चाहिए? सुमित्रा को मिलना चाहिए। उसके बाद में शंख और चक्र दोनों समान हैं, तो समान खीर मिलना चाहिए। वाल्मीकि जी वही बात कहते हैं कि खीर को 50% जो खीर था वो दे दिया गया माता कौशल्या को, अन्य जो 50 था उसमें से 25% खीर सुमित्रा को दिया गया, और जो 25 था उसको दो भाग में बांटे, तो 12.5% जो खीर था वो दे दिए कैकेयी को, और जो 12.5% बच गया था रिजर्व अपने पास रखे। ये नहीं कि मुझसे बेटा पैदा हो गया था, बात नहीं था, वो केवल रखे। और फिर तीनों रानियों में कल्पना उनके गुण को तौलने लगे। मोस्टली कैकेयी और सुमित्रा के गुणों का तौल हो रहा था, कौशल्या के गुण का तौल नहीं था, क्योंकि 50% तौल ले चुकी थी। अब वे 12.5% देना था तो कौशल्या को देना उचित नहीं होता, अब इन दोनों में से देना था, कैकेयी और सुमित्रा में से। तो महाराज दशरथ सोचे कि कैकेयी का विवाह आसानी से नहीं हुआ, इसका बाप कंडीशन लगा दिया कि मेरे बेटी का बेटा ही राजा होगा, एक कंडीशन। दूसरा, ये छोटी रानी होने के चलते सबको बड़ा परेशान भी करती रहती है, अपने इसको अपने ब्यूटी पर बड़ा गुमान है, जहां कि सुमित्रा बिल्कुल साधु है, ये सेवा करती रहती है, इसका काम है सेवा करना ही। इसीलिए महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर के वो 12.5% जो खीर था वो सुमित्रा को दे दिए। तो इस प्रकार से 12.5% सुमित्रा को मिला और 12.5% भरत को मिला। लेकिन बच्चों में गुण जाता है मां का, जो बेटियां होती हैं उनमें गुण प्राप्त होता है बाप का, और जो बेटे होते हैं उनमें गुण प्राप्त होता है मां का। तो सुमित्रा जी बड़ी सेवा भाव में थी, इसीलिए कालांतर में जब लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए तो दोनों बेचारे सेवक हुए, एक हुए लक्ष्मण जी राम जी का सेवा करने के लिए, और उधर शत्रुघ्न जी भरत जी का सेवा करने के लिए। माता जी का गुण पुत्रों में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से वो खीर बांट दिए, और एक साल के बाद 12 महीने के बाद आज के दिन क्रमशः भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लिए। तो वही बात यहां पर सुखदेव गोस्वामी सुन गए, तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशा अंशेन चतुर गाध अंशा अंशेन अंश के अंश से साक्षात हरि भगवान श्री कृष्ण के अंश का अंश चार भागों में बांटा, चार भागों में हुआ। पुत्रत्वम प्राथित सुरई, ये पुत्रत्व की प्राप्ति हुई कैसे हुई, प्राथित सुरई देवताओं ने प्रार्थना किया था भगवान से, परम पुरुष भगवान को देवता लोग प्रार्थना किए थे, तब भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार हुए थे। और पुत्र कौन थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञका, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नाम से ये लोग प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से भगवान राम का आविर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी थोड़ा खींच लेता हूं और दो तीन मिनट, ब्रह्मा जी उधर समस्त देवताओं को बोले जाओ तुम बंदर बन जाओ, सबके सब, श्राप नहीं दिए, रिक्वेस्ट किए कि जाओ तुम लोग बंदर जोनी में जन्म लो, क्योंकि राम को तुम लोग सहायता करोगे। भगवान श्री राम अयोध्या छोड़े थे दो कारण से, दो ही कारण था भगवान श्री राम को अयोध्या छोड़ने का। भगवान श्री राम के समान मातृभक्त पितृभक्त इस धराधाम पर कोई नहीं हुआ है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम को दशरथ जी नहीं कहे 4 साल बन जाने के लिए, कैकेयी जी ने कहा था, दशरथ जी तो केवल वचन दिए थे, कैकेयी के पिताजी को वचन दे दिए थे कि तुम्हारा बेटा राजा होगा, और कैकेयी को वचन दिए थे, दो वचन दिए थे जो कैकेयी ने मांगा था। तो महाराज दशरथ दो कारण से, सॉरी भगवान श्री राम दो कारण से वनवास जाने के लिए तैयार हुए। और दो कारण क्या है वर्णन किए हैं वाल्मीकि जी, अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयम् अपिपासके भक्षम एषा विषम तिक्ष पतेयम् अपि चारवणरे। कहते हैं यदि मैं मर करके भी यदि पिता का आज्ञा पालन करना हो तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा, यदि नरक में भी जाना होगा तो मैं नरक के जाने के लिए तैयार हूं लेकिन पिता का आज्ञा पालन करूंगा, विष खाना हो तो विष खाऊंगा लेकिन पिता का आज्ञा पालन करूंगा। तो दो कारण से भगवान श्री राम वन में गए, एक कारण था पिता का आज्ञा पालन करना और दूसरा था माता को आनंद देने के लिए। भगवान श्री राम यदि वन में जाते तो कैकई को आनंद होता, कौशल्या और कैकई में भगवान राम कभी भेद नहीं देखे, उनको तो मालूम भी नहीं कि त्रिया चरित्र क्या हुआ है, उनको इतना ही पता चला कि पिताजी ने वचन दिया था और उस वचन के अनुसार भरत को राज और मुझे 14 साल का वनवास है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा सिखाए हैं। मैं दो मर्यादाओं का केवल वर्णन करूंगा, बाद में कथा समाप्त करूंगा। एक मर्यादा कि कैसे अपने बच्चों को बाप मां को सेवा करना चाहिए, बाप का आज्ञा पालन करना बेटा के लिए सर्वोपरि है, न कि बाप को मसाज दे और उनका आज्ञा पालन न करे, ये नहीं, बाप का आज्ञा पालन करो, बाप जो कहता है वह करो। और दूसरा, समस्त परिस्थितियों में मां का रक्षा करो, मां को हमेशा प्रसन्न रखो, ये भगवान राम से हमें सीखना चाहिए कि बाप का आज्ञा पालन और मां को हमेशा प्रसन्न करना, एक सिख। दूसरा, भगवान श्री राम जब जंगल में गए थे तो रावण सीता जी का चोरी कर लिया था, वही भगवान श्री राम सीता जी का रक्षा करने के लिए, पति धर्म का पालन करने के लिए सोने के लंका को तहस नहस कर दिए, रावण को खत्म कर दिए। और वही भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा हुए तो राज धर्म निभाने के लिए, ये जानते हुए भी कि सीता बिल्कुल पवित्र है, फिर भी राज धर्म के बेड़ियों से उनका पैर बंधा हुआ था, अपनी सुप्रिया प्राण प्रिया पत्नी सीता को अपने आंखों से ओझल कर दिए। सीता को कभी भगवान राम त्याग नहीं किए हैं, राम त्याग करेंगे तो रामायण खत्म हो जाएगा, लोग उससे क्लियर किए हैं कि भगवान श्री राम सीता को कभी त्यागे नहीं थे, हमेशा सीता भगवान श्री राम के साथ थी। और वैसे ही भगवान श्री राम सीता के साथ सदैव थे। तो दूसरा मर्यादा, पति होने के नाते पत्नी का रक्षा करना, चाहे कुछ भी करना क्यों न पड़े, और राजा होने के नाते राज धर्म का पालन करना, चाहे कुछ भी करना क्यों न पड़े, वो दूसरा चीज। तीसरा चीज, जब रावण से लड़ाई हो रही थी उस समय भगवान श्री राम अयोध्या में खबर नहीं भेजे भरत को कि भरत बड़ी विपत्ति आ गई, तुम्हारी भाभी को रावण चोरी कर लिया है और हमें लड़ाई करना है, सब सेना भेजो। भगवान राम ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। धर्म निभाए, वनवासी का धर्म निभाए भगवान श्री राम। भगवान श्री राम राजा नहीं थे, इसीलिए राजा के किसी भी वस्तु का सदुपयोग राम नहीं कर सकते थे, वे भी एक प्रजा के समान थे, वे अपना सेना तैयार किए, जंगलियों का बानरों का सेना तैयार किए, और ये बानर कोई ऑर्डिनरी बानर नहीं थे, देवता लोग थे। तो देव सेना तैयार किए भगवान श्री राम, और स्वाभाविक था कि रावण भी कोई ऑर्डिनरी नहीं था, तो देव सेना से ही रावण मारा जा सकता था। इस प्रकार से भगवान श्री राम रावण को मारे, भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई लंका को हथियाने के लिए नहीं किए थे। प्रत्येक राजा लोग अपना राज्य का सीमा बढ़ाने के लिए अन्य राजाओं से लड़ाई करते हैं, भगवान राम सीमा बढ़ाने के लिए रावण से लड़ाई नहीं किए थे, वो तो अपनी पत्नी को लाने के लिए राम से लाया, मर गया तो उनका क्या दोस्त है, उनका भगवान राम का दोस्त उसमें क्या है, वो तो अपने पत्नी का रक्षा करने की लड़ाई किए। यदि सीमा बढ़ाने के लिए किए होते तो वह राज महाराज भरत का था, राम को थोड़ा भी अधिकार नहीं था कि वे विभीषण को वहां का राजा बनाते, लेकिन विभीषण को वहां का राजा बनाए, क्योंकि वे राजा की तरफ से लड़ाई करने नहीं गए थे, ये तो मुफ्त में राज मिल गया था, और ये बनवासी थे, बनवासी को राज की जरूरत क्या है। सीता जी ने सब कुछ छोड़ करके जंगल में आकर के बनवासी का रूप धारण कर कर रह रही थी और सोने के हिरण का कामना किया, क्या हुआ, रावण चोरी करके लेकर चला गया। तो जो व्यक्ति जैसा है उसी स्थिति में रहे, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ है गृहस्थ रहे, वानप्रस्थी है वानप्रस्थी रहे, सन्यासी है सन्यासी रहे, अन्य दूसरे के वस्तु को कामना मत करो। सोने का हरिण यदि महारानी सीता होती तो वहां शोभा देता, लेकिन वनवासीन सीता के लिए सोने का हरिण शोभावान नहीं था, यही कारण था कि सीता का हरण हुआ। तो भगवान श्री राम राज नहीं चाहते थे, अपना संकल्प तोड़ना नहीं चाहते थे, इस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या का सॉरी रंगा का राज विष्णु को दिए और स्वयं अयोध्या आकर के भगवान श्री राम राज्य किए। 11,000 वर्ष तक भगवान इस धराधाम पर राज्य किए हैं। जय भगवान श्री रामचंद्र की, जगत जननी सीता मैया की। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।